بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متر، زہرا زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ شروتاؤں، آج قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 14 اور 15 کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری قاسم رضی نے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد۔ صدق الله العلي العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتیانت کرپاشیل اور دیاوان ہے، لوگوں کے لیے پتنیوں، سنتانوں، سونے چاندی سے بٹورے ہوئے دھن، اچھے گھوڑوں، مویشیوں تتھا کھیتیوں سے پریم کو اچھا دکھایا گیا ہے۔ ये सब सांसारिक जीवन की नश्वर वस्तुएं हैं और अल्लाह के पास अच्छा प्रतिफल है। हे पैगंबर, कह दीजिए कि मैं तुम्हें इससे अच्छी वस्तुओं की खबर देता हूँ। जो लोग अल्लाह से डरते हैं, उनके लिए अल्लाह के पास ऐसे बाग हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं और वहाँ वे सदैव रहेंगे। उनकी पत्नियाँ होंगी और अल्लाह की प्रसन्नता होगी और अल्लाह अपने बंदों को देखने वाला है।
ये रेडियो तहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओं, मैं हूँ अहमद अब्बास, मेरा सलाम स्वीकार कीजिए। हमारा ये प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi। व्हाट्सएप पर हमारा संपर्क नंबर है 0098-9035065492। श्रोताओ, आज शनिवार है। इस पंथ की 28, शाबान की 16 और मार्च की 19 तारीख। इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा इस प्रकार है। सबसे पहले आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार सुनेंगे, जिसके बाद कार्यक्रम राजनीतिक चर्चा आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। राजनीतिक चर्चा के बाद आप साप्ताहिक कार्यक्रम सुनेंगे उज्जवल भविष्य। और श्रोताओ, इस समय की सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा ईरान भ्रमण। तो यह है इस समय की सभा में प्रस्तुत किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ क्षणों बाद आप सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। लीजिए श्रोताओ, अहमद अब्बास से सुनिए विश्व समाचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ब्रिटिश मीडिया का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में वियना में ईरान के साथ महत्वपूर्ण समझौता हो सकता है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद से इसराइल बुरी तरह घबराया हुआ है। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद का इमारत दौरा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अमेरिका पर बुरी तरह निराशा छा गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस के पास अपनी गलतियों का भारी नुकसान कम करने का आखिरी मौका है। और अब आप विस्तार से समाचार सुनिए। ब्रिटिश मीडिया में ये अटकलें तेज हो गई हैं कि वियना में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच जारी बातचीत निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है और आने वाले 48 घंटों के भीतर समझौता हो जाने की संभावना है। इंडिपेंडेंट ने वियना वार्ता में शामिल एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से लिखा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अगले 48 घंटों में समझौता हो सकता है। ब्रितानिया अखबार ने लिखा कि एटमी डील की बहाली से ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटने का रास्ता साफ हो गया और साफ होगा और ईरान अपना तेल पश्चिमी देशों को निर्यात कर सकेगा। आयरलैंड के विदेश मंत्री साइमन कावनी ने, जो वियना वार्ता में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से फैसिलिटेटर के तौर पर काम कर रहे हैं, कहा है कि शनिवार, रविवार और सोमवार तक समझौता हो जाने के बहुत अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। सीरिया लिबनान सीमा पर ईरान के संभावित हमले के डर से इसराइली सेना में भगदड़ मची है। ज़ानी मीडिया के अनुसार तेल अवीव ने इसराइल की सेना को पूरी तरह अलर्ट रहने का आदेश दिया है। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले सप्ताह रविवार तड़के इराक के अरबील में स्थित बदनाम जमाना इसराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद और ज़ायनी सेना के विशेष सैन्य ऑपरेशन कमांड के दो ठिकानों पर इस्लामी क्रांति के संरक्षक बल IRGC के मिसाइलों की हुई बारिश के बाद तेल अवीव सकते में है। IRGC ने एक बयान जारी करके कहा है कि देश की सुरक्षा और स्थिरता हमारी रेड लाइन है और अरबील में किया गया मिसाइल हमला अवैध ज़ायनी शासन के अपराधों का मुंह तोड़ जवाब था। उल्लेखनीय है कि 2 सप्ताह पहले 7 फरवरी को इसराइल ने दमिश्क के उपनगरीय इलाके पर हमला किया था, जिसमें पवित्र स्थलों की रक्षा करने वाले IRGC के 2 जियाले शहीद हो गए थे। अरबी भाषा के अखबार रायुल योम के पत्रकार नादिर सफदी की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जिसमें बताया गया है कि जब से अमरीका के बाइडन प्रशासन के इस इरादे के बारे में पता चला है कि वो ईरान की पासदारान इनकलाब फोर्स IRGC को आतंकी संगठनों की सूची से निकालना चाहता है, इसराइल पर मानो बिजली गिर गई है और तेल अवीव सरकार बार बार वाशिंगटन को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि उसके इस कदम के खतरनाक परिणाम निकलेंगे। इसराइली मीडिया में चारों ओर बार बार अमरीका को चेतावनी दी जा रही है कि उसका ये कदम खतरनाक साबित होगा। इसराइली अधिकारी बाइडन सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि वह अपना इरादा बदल दे। वाशिंगटन ने बुधवार को यह इशारा दिया था कि ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते को बहाल करने का समय करीब आ गया है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि हम समझौते के करीब पहुंच गए हैं, अलबत्ता अभी समझौता हुआ नहीं है। नेट प्राइस से जब यह पूछा गया कि ईरान किस तरह की गारंटी चाहता है और IRGC को आतंकी संगठनों की सूची से निकालने की मांग पर अमरीका का क्या जवाब होगा, तो इस पर प्राइस ने कहा कि हम ये समझते हैं कि शेष बचे मुद्दों को हल कर लेना संभव है। इसराइली अधिकारियों ने अमरीकी सरकार पर दबाव डाला है कि वो IRGC को आतंकी संगठनों की सूची से बाहर न निकाले क्योंकि उसने हजारों जाने ली हैं। इसराइली अधिकारियों को यह चिंता सता रही है कि बाइडन सरकार ईरान के साथ कई मुद्दों पर सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि उसने ईरान से इसराइल जैसे अमरीकी घटकों की सुरक्षा के बारे में ठोस गारंटी नहीं ली है। सीरिया की आधिकारिक समाचार एजेंसी साना ने शुक्रवार की रात को इस देश के राष्ट्रपति बशार असद के संयुक्त अरब अमारात दौरे की सूचना दी। सीरियाई राष्ट्रपति ने अपनी UAE यात्रा के दौरान सबसे पहले संयुक्त अरब अमारात के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद आले मकतूम के साथ मुलाकात की। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार रात सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद वर्षों बाद संयुक्त अरब अमारात की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। सीरियाई राष्ट्रपति का UAE में भव्य स्वागत हुआ। बशार असद ने अपनी इमारात यात्रा का आरंभ इस देश के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद आले मकतूम से मुलाकात के साथ किया। आले मकतूम ने दुबई में बशार असद और उनके साथ UAE की यात्रा पर पहुंचे एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। दोनों देशों के नेताओं के बीच मुलाकात में अरब जगत और पश्चिमी एशिया में सुरक्षा, स्थिरता और शांति में योगदान को लेकर आपसी सहयोग और समन्वय पर बात हुई। संयुक्त अरब इमारात के प्रधानमंत्री ने सीरिया में जल्द पूर्ण रूप से शांति स्थापित होने की आशा जताई। इस बीच सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद ने संयुक्त अरब इमारात के युवराज मोहम्मद बिन जायद आले नाहयान से भी मुलाकात की। इस मुलाकात में भी दोनों देशों के नेताओं ने आपसी सहयोग और संबंध विस्तार पर बल दिया है। अमरीका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरियाई राष्ट्रपति बशार असद की इमारात यात्रा से अमरीका को भारी निराशा है। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि बशार असद सरकार से संबंध बढ़ाने की योजना रखने वाली सरकारों को यह देखना चाहिए कि पिछले दशक में सीरियाई सरकार ने जनता के साथ क्या किया और पूरे देश को शांति और मानवता प्रेमी सहायता से वंचित कर दिया। ज्ञात रहे कि अमरीका ने दुनिया के अनेक देशों के साथ मिलकर खतरनाक साजिश तैयार की थी जिसका मकसद सीरिया के बशार असद सरकार का तख्ता उलटना था और वहां अपनी पिट्ठू सरकार को सत्ता में लाना था, मगर अमरीका की यह साजिश नाकाम हो गई। नेट प्राइस ने कहा कि अमरीका दमिश्क सरकार पर लगाए गए प्रतिबंध नहीं हटाएगा और सीरिया के पुनर्निर्माण का उस समय तक समर्थन नहीं करेगा जब तक वहां राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति नहीं होती। अमरीका जिस राजनीतिक प्रगति की बात कर रहा है वो दरअसल इस देश में अमरीकी पिट्ठुओं को सत्ता दिलाने की योजना है। हिजबुल्लाह लिबनान के महासचिव सैयद हसन नसरुल्ला ने पश्चिमी मीडिया के गलत और बेबुनियाद प्रोपेगंडे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यूक्रेन में हिजबुल्लाह का ना कोई जवान है और ना ही कोई सैन्य सलाहकार। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूक्रेन में किसी भी रूप में हिजबुल्लाह की कोई भी उपस्थिति नहीं है। शुक्रवार की रात में सैयद हसन नसरुल्ला ने अपने एक भाषण में मीडिया की ऐसी सभी खबरों को बेबुनियाद करार दिया कि जिनमें यह दावा किया गया था कि हिजबुल्लाह के जवान यूक्रेन में मौजूद है। हिजबुल्लाह के महासचिव ने यह स्पष्ट करते हुए कि हिजबुल्लाह यूक्रेन में किसी भी रूप में मौजूद नहीं है, लिबनान सरकार से मांग की कि देश में एक संकट प्रबंधन केंद्र स्थापित किया जाए। उन्होंने कहा कि क्योंकि यूक्रेन युद्ध का प्रभाव अब लिबनान सहित इस क्षेत्र में भी दिखने लगा है, इसलिए जरूरी है कि हम पहले से ही सतर्क हो जाएं। यूक्रेन के मुद्दे पर पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत हुई। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार सुबह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। نومبر 2021 کے بعد دونوں نیتاؤں کے بیچ یہ پہلی ویڈیو کانفرنس کے مادھیم سے وارتا ہے۔ چین کے سرکاری میڈیا نے بات چیت کی کچھ باتیں ترنت سارجنک کرتے ہوئے چینی راشٹرپتی کے پکش کو سامنے رکھا۔ چین کے سرکاری میڈیا کے انوسار شی جن پنگ نے کہا کہ چین اور امریکہ کو ویشوک ذمہ داریوں کے سامنے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے اور وشو میں شانتی ستھاپت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس یوکرین پر روسی حملے کے لیے روس کو سینیہ ایوم آرتھک سہایتا مہیا کرانے کا چین پر آروپ لگا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس وارتا کی یوجنا پر تب سے کام ہو رہا تھا جب بائیڈن اور شی جن پنگ نے پچھلے سال نومبر میں ایک ڈیجیٹل شکھر بیٹھک کی تھی۔ حالانکہ یوکرین کے خلاف روسی حملوں کو لے کر واشنگٹن اور بیجنگ کے بیچ مت بھیدوں کے اس بات چیت کے کیندر میں رہنے کی امید تھی۔ اسلامک سہیوگ سنگھن نے حریت کانفرنس کے چیئرمین کو اگلے سپتاہ اسلام آباد میں اپنے ودیش منتریوں کی بیٹھک میں بھاگ لینے کے لیے آمنترت کیا۔ بھارت نے اس قدم کی آلوچنا کی۔ پراپت رپورٹ کے مطابق اگلے سپتاہ پاکستان میں اسلامک سہیوگ سنگھن او آئی سی کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے سروداری حریت کانفرنس کے چیئرمین کو آمنترت کرنے کو لے کر بھارت نے کڑا رخ اپنایا ہے۔ بھارت سرکار نے اپنی ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اس طرح کی گتیویدھیوں کو بہت گمبھیرتا سے لیتی ہے۔ بھارتی ودیش منترالے کے پروکتا ارندم باغچی نے کہا کہ ہم او آئی سی سے امید کرتے ہیں کہ بھارت ورودھی گتیویدھیوں اور آتنکواد میں شامل رہنے والوں کو بڑھاوا نہیں دیا جائے۔ پترکاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت ایسی کارروائیوں کو بہت گمبھیرتا سے لیتا ہے جس کا مقصد دیش کی ایکتا کو نقصان پہنچانا اور اس کی سمپربھوتا اور کھیتری اکھنڈتا کا الگھن کرنا ہو۔ بھارت نینترت کشمیر میں لڑائی شروع ہو جانے کے بعد گھاٹی چھوڑنے والے کشمیری پنڈتوں کی کہانی پر آدھارت بالی ووڈ فلم دا کشمیر فائلز پر مسلمانوں کے ساتھ ہی پنڈتوں نے بھی اعتراض جتایا ہے۔ فلم نرماتا ویویک اگنی ہوتری کی فلم سن 1990 کے دوران پنڈتوں کے ساتھ ہونے والی کتھت زیادتی کو پیش کرتی ہے، مگر گمبھیر حالات میں بھی کشمیر نہ چھوڑنے والے پنڈتوں کے نیتا سنجے تیکو کہتے ہیں کہ فلم نے جن گھٹناؤں کا ذکر کیا وہ ہوئی تو تھیں مگر ان کو بہت بڑھا چڑھا کر اور بڑے بھڑکاؤ انداز میں دکھایا گیا ہے۔ تیکو نے کہا کہ یہ فلم کشمیری مسلمانوں کا آتنکوادی کے طور پر پیش کرتی ہے جو غلط بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ حالات خراب تھے، مارا ماری تھی، تو کتنے پنڈت خاندانوں کو کشمیری مسلمانوں نے بچایا تھا۔ کشمیری بولنے والے ہندوؤں کو بھارت نینترت کشمیر میں پنڈت کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور پنڈتوں کی زبان، آرٹ اور ساہتیہ ایک جیسے تھے، یہاں تک کہ پنڈت اور مسلمان گھروں میں بچوں کے پکارنے کے نام ایک جیسے رکھتے تھے۔ یمن کے انصار اللہ آندولن کے نیتا اور صنعا کی نیشنل سیلویشن سرکار کے ادھیکاری محمد بخیتی نے انصار اللہ آندولن کو بلیک لسٹ کرنے کے یورپی سنگھ کے فیصلے کی کٹور نندہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ قدم اس سنگھ کے نیتک پتن کو دکھاتا ہے۔ یورپی سنگھ نے انصار اللہ کی اور سے سعودی عرب پر کیے گئے حالیہ جوابی حملوں کے آدھار پر اس سنگٹھن کو اپنی بلیک لسٹ میں شامل کیا ہے اور اس کی سمپتی سیل کر لی ہے۔ یورپی سنگھ نے ورش 2014 میں یہ بلیک لسٹ تیار کی تھی۔ محمد بخیتی نے کہا کہ ہم تو یہ امید کر رہے تھے کہ برٹین کے باہر نکل جانے کے بعد یورپی سنگھ کی نیتوں میں نیتک روپ سے سدھار ہوگا، مگر یورپی سنگھ نے یہ آپتی جنک فیصلہ کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے سماچار سماپت ہوئے۔
یہ تہران ہے اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
راجنیتک چرچا۔
راجنیتک چرچا کے ساتھ میں اختر رضوی آپ کی سیوا میں اپستھت ہوں، میرا سلام سویکار کیجیے۔ ہماری آج کی چرچا کے وشے ہیں دشمنوں کو ایران کی دھمکی، بشار اسد کی یو اے ای یاترا اور کشمیر میں انتم موکش داتا کے شبھ جنم دیوس کا جشن۔ تو سب سے پہلے دشمنوں کو ایران کی کھلی دھمکی کا وشے۔ इस्लामी गणतंत्र ईरान के नौसेना के वरिष्ठ कमांडर ने दुश्मनों को धमकी दी है और कहा है कि अगर उन्होंने जरा सी भी शैतानी करने की कोशिश की तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी रविश जैदी।
इस्लामी गणतंत्र ईरान की नौसेना के कमांडर एडमिरल शहराम ईरानी का कहना है कि ईरान कभी भी दुश्मनों को तनिक भी शैतानी करने की इजाजत नहीं देगा और उन्हें पैरों तले रौंद देगा। उन्होंने स्वतंत्र जल क्षेत्रों में नौसेना की गश्ती दल के रवाना होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जब हम दुनिया की शक्ति के आंकड़ों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको बदलने के लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं और सभी लोगों की इसमें भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में सारे लोगों की भूमिका होती है, लेकिन दुश्मन इसमें ईरान की सुंदर भूमिका की अनदेखी नहीं कर सकते। नौसेना के कमांडर का कहना है कि हम दुश्मनों की शैतानी और उनके षड्यंत्रों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं और इस्लामी गणतंत्र ईरान के दुश्मनों विशेषकर अमेरिका की ओर से शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों और आरोपों का जारी रहना एक हथकंडा बन गया है। इस संबंध में क्षेत्र में आतंकवादी अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर केन मैकेंजी ने की जिनके सैनिकों की उपस्थिति की वजह से पश्चिमी एशिया का क्षेत्र अशांति का शिकार है। ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में पश्चिम की चिंताओं को उजागर करते हुए एक बार फिर तेहरान पर क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। आतंकवादी अमरीकी सेना के कमांडर जनरल मैकेंजी ने अपनी ईरानोफोबिया की अपने देश की नीतियों को दोहराते हुए दावा किया कि तेहरान क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने पेंटागन में एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान पर क्षेत्रीय सरकारों को कमजोर करने के लिए हथियारों की आपूर्ति करने का आरोप लगाया। वो यहीं पर नहीं रुके बल्कि दावा किया कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल यथावत खतरा बने हुए हैं। अमरीका के आतंकवादी सैनिकों के कमांडर का शत्रुतापूर्ण बयान ये दर्शाता है कि ईरान की दिन प्रतिदिन बढ़ती शक्ति से अमरीका बुरी तरह असहाय नजर आ रहा है, जबकि उनके इस बयान से यह भी पता चलता है कि वाशिंगटन तेहरान की मिसाइल शक्ति और मिसाइलों के बड़े भंडार से बुरी तरह भयभीत है। बहरहाल ईरान ने बल दिया है कि वो दुश्मनों को शैतानी चाल चलने और उनको षड्यंत्र करने की इजाजत कदापि नहीं देगा और अगर दुश्मन ने कोई गलती करने का साहस किया तो उसे पैरों तले रौंद दिया जाएगा।
और अब रुख करते हैं पश्चिम एशिया का। सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद 11 वर्ष में पहली बार किसी अरब देश के दौरे पर गए। उनका ये दौरा कई आयाम से महत्वपूर्ण है। एक समीक्षा पेश कर रहे हैं हमारे साथी मोहम्मद मेहदी।
सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद संयुक्त अरब इमारात के दौरे पर हैं, जहां उनकी संयुक्त अरब इमारात के नरेश शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम से मुलाकात हुई। सीरिया में विदेश समर्थित आतंकवादियों और कट्टरपंथियों की गतिविधियों के शुरू होने के बाद से किसी अरब देश का उनका ये पहला दौरा है। शुक्रवार को अबू धाबी में क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद की मुलाकात हुई, जिसमें इमारात के क्राउन प्रिंस ने सीरिया को अरब सुरक्षा के मूल स्तंभ की संज्ञा दी। क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने संयुक्त अरब इमारात और सीरिया के बीच संबंधों को मैत्रीपूर्ण करार देते हुए कहा कि उनका देश सीरिया के साथ सहयोग में विस्तार में गहरी रुचि रखता है। इस मुलाकात में सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद ने कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि हम अपने सिद्धांतों पर अपने देश की अखंडता और संप्रभुता तथा अपनी जनता के हितों पर कटिबद्ध रहें। ज्ञात रहे कि सीरिया के राष्ट्रपति बशार असद के यूएई के दौरे से कुछ महीने पहले इमारात के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान ने दमिश्क का दौरा किया था। ये दौरा ऐसे समय में अंजाम पाया है कि अरब संघ में दमिश्क की वापसी की संभावना बढ़ गई है। सीरिया के राष्ट्रपति के यूएई के दौरे पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सीरिया के राष्ट्रपति ने 11 साल बाद किसी अरब देश का दौरा किया है। उनका ये दौरा कई आयामों से महत्वपूर्ण है। पहला ये कि ये यात्रा सीरियाई व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए राजनीतिक और सैन्य प्रयासों के विफलता का चिन्ह है। संयुक्त अरब इमारात ने फारस की खाड़ी के 5 अन्य सदस्यों के साथ मिलकर फरवरी 2012 में सीरिया से अपने राजदूतों को बुलाने का ऐलान किया था। संयुक्त अरब इमारात ने पिछले एक दशक के दौरान बशार असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन उसे कुछ हाथ नहीं लगा और जब उसकी समझ में आ गया तो फिर उसने सीरिया की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। इन 11 वर्षों में राष्ट्रपति बशार असद ने बहुत ही कम विदेशों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद और उसके समर्थकों से संघर्ष में सीरिया के 2 अहम घटकों रूस और ईरान का ही दौरा किया। दूसरा आयाम यह है कि राष्ट्रपति बशार असद का ये दौरा उनकी कानूनी वैधता और कानूनी सरकार को स्वीकार करने के अर्थ में है और यही वजह है कि कतर के अल जजीरा टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान को नकल करते हुए लिखा है कि हमें बशार असद को वैधता प्रदान करने के प्रयासों पर खेद है। तीसरा ये कि अभी ये स्पष्ट नहीं है कि सीरिया अरब संघ में लौटेगा या नहीं। सीरिया को वर्ष 2011 के अंत में अरब संघ से निकाल दिया गया था, जबकि ये देश इस संघ को बनाने वाले देशों में सबसे आगे था। चौथा ये कि इमारात के दौरे के लिए बशार असद को मोहम्मद बिन जायद का निमंत्रण अबू धाबी द्वारा दमिश्क के साथ संबंधों में विस्तार का चिन्ह है। बहरहाल अब अरब देशों की समझ में आ गया है कि राजनीतिक दबाव और सैन्य तरीकों से दमिश्क की सरकार को बदला नहीं जा सकता, इसलिए धीरे धीरे एक एक करके अरब देश दमिश्क के साथ संबंधों को विस्तृत करने का प्रयास कर रहे हैं।
और अब रुख करते हैं भारत का।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा। समाचारों से एक कदम आगे बढ़ते हुए घटनाओं की तह तक पहुंचने और विभिन्न आयामों को छूने की कोशिश। कार्यक्रम राजनैतिक चर्चा।
भारत नियंत्रित कश्मीर में अंतिम मोक्षदाता हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के शुभ जन्म दिवस पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मेन कश्मीरी दलों पर हमला करते हुए केंद्र सरकार की पीठ थपथपाई है। विस्तृत रिपोर्ट के साथ श्रीनगर से हमारे साथी सिप्ते मोहम्मद हसन।
विश्वभर के इस्लामी जनता के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी इमाम जमा अजलल्लाहु ताला फरजह शरीफ के जन्मदिन के अवसर पर धार्मिक सभाएं आयोजित हुई, जिनमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। धार्मिक नेताओं ने इमाम असर की जिंदगी पर विस्तार के साथ रोशनी डाली और लोगों पर बल दिया कि वो एम मासूमीन अलैहिस्सलाम की राह पर चलें, उसी में उनकी कामयाबी है। श्रीनगर के ऐतिहासिक जामे मस्जिद को एक बार फिर पुलिस ने शबे बारात के दिन बंद कर दिया, जिस पर धार्मिक गुटों ने खेद प्रकट करते हुए सरकार पर बल दिया है कि वो ऐसा न करें। मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने एक वक्तव्य जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारे धार्मिक मामलात में मुदाखलत है जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आए दिन कभी मस्जिद को नमाजियों के लिए खोला जाता है तो कभी बंद, ये हमारी समझ से बालातर है कि ये क्या खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब 2.5 वर्ष से जो खेल खेला जा रहा है उसको बंद किया जाना चाहिए। इस बीच जम्मू कश्मीर में राजनीतिक सरगर्मियां भी अपने उरूज पर हैं। भाजपा के जो जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया और दावा किया है कि धारा 370 के समाप्त करने के बाद जम्मू कश्मीर में तरक्की आई है। उन्होंने विपक्षी दलों खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा,
नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की जमीन खिसक चुकी है, ऐसे में इन पार्टियों के नेता आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, लेकिन इनसे सवाल पूछा जाए آئے گا کہ جب آپ لوگ سطح میں تھے تو آپ نے نہ تو کبھی گجر بکر والوں اور گدی سپیوں کا بھلا کیا، نہ آپ نے کبھی پہاڑی قبیلے کے لوگوں کا بھلا کیا، نہ آپ نے کبھی او بی سی سماج کا بھلا کیا، نہ مہیلاؤں کا بھلا ہوا، نہ ریفیوجیوں کا کبھی این سی کانگریس اور پی ڈی پی نے بھلا کیا۔ آج مودی سرکار سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس اس مشن کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو نیشنل کانفرنس یوں کانگریس اور پی ڈی پی کو تکلیف ہو رہی ہے اور یہ اکٹھے ہو کے گپکار گٹھ بندھن بنا رہے ہیں۔ یہ جتنا مرضی گپکار گٹھ بندھن بنا دے، ان سب کی جمانتیں جبت ہوں گی۔
اس بیچ جموں کشمیر میں ہنسک گھٹناؤں کا کرم بھی جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دکشنی کشمیر میں آگیات بندوق داریوں نے ایک ویکتی کو گولی مار کر ہتاہت کر دیا۔ ہتیا کے کارن کا ترنت پتا نہیں چل سکا، پرنتو پولیس کا کہنا ہے کہ اس ہتیا کے پیچھے الگاؤں وادی چھاپہ مار ہو سکتے ہیں۔ سپتی محمد حسن، ریڈیو تہران، سری نگر۔
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا یہ کارکرم یہیں پر سماپت ہوا۔ دوستوں، آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا۔ ہماری آج کی اس سبھا کے انت میں آپ سنیں گے کارکرم ایران بھرمڑ، کنتو اس سے پہلے پرستوت ہے کارکرم اجول بھوش۔
اجول بھوش،
دوستو کارکرم اجول بھوشیہ کی ایک انیہ کڑی کے ساتھ آپ کی سیوا میں اپستھت ہیں مریم مہر دادی اور سید میسم کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستو، اس کارکرم میں ہم ایران کی اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد دیش سے غریبی کو مٹانے اور سماج میں غریبوں اور امیروں کے بیچ کی کھائی کو پاٹنے کے وشے پر چرچا کریں گے۔
ایران کی اسلامی کرانتی کی اپلبدھیوں کے بارے میں چرچا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایران کے دشمنوں نے اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد اسلامی گنتنتر ایران کی چھوی خراب کرنے کا بہت پریاس کیا۔ حالانکہ ایران نے ایک راج شاہی ویوستھا میں دھارمک لوک تانترک ویوستھا کا راستہ طے کیا ہے اور پچھلے چار دشکوں کے دوران اس دیش نے دشمنوں کی طرح طرح کی سازشوں کے باوجود آشچرچکت کرنے والی سفلتائیں حاصل کی ہیں۔
پچھلے کارکرموں میں ہم نے ایران کی اسلامی کرانتی کی سفلتا کے بعد دیش کی راجنیتک اپلبدھیوں کا الیکھ کیا تھا۔ اسلامی کرانتی کی مہتوپورن سفلتاؤں میں سے ایک دیش کا ایسی استھتی سے باہر نکلنا ہے جس میں وہ پورن روپ سے امریکہ سمیت ودیشی شکتیوں پر نربھر تھا۔ اس استھتی سے نکل کر ایران نے راجنیتک سوادھینتا کے میدان میں قدم رکھا۔ یہ ایک ایسا دور تھا جب لگ بھگ سبھی دیشوں کو دو دھرویہ ویشوک ویوستھا میں بانٹ دیا گیا تھا۔ دو دھرویہ ویوستھا اور شیت یدھ کے واتاورن میں ایران کی اسلامی کرانتی سمست دیشوں کے لیے، کہ جو دو مہا شکتیوں کے اتیاچاروں سے گرست تھے، ایک آدرش بن گئی۔
ایران کی اسلامی کرانتی سے امریکہ اور پورو سوویت سنگھ کی دشمنی کا ایک مکھیہ کارن ان دیشوں کے ودروہ کی چنتا تھی جو ان کے ورچسو میں تھے۔ سفلتا کے بعد اسلامی کرانتی کو دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے بہت زیادہ اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑا، لیکن سمست دشمنیوں اور سازشوں کے باوجود اسلامی کرانتی نے آرتھک وکاس کے مارگ میں نئے کیرتیمان استھاپت کیے ہیں۔ سمست سمسیاؤں کے باوجود آج سماج کی آرتھک استھتی ایسی ہے کہ جسے پتا چلتا ہے کہ لوگوں کی آرتھک استھتی کرانتی سے پہلے کی تلنا میں بہت بہتر ہے۔
آرتھک کھیتر میں ایران کی اسلامی کرانتی نے کئی مہتوپورن اپلبدھیاں حاصل کی ہیں۔ کئی طرح کی سویدھاؤں کو پہنچایا گیا۔ شہروں میں سویدھاؤں اور سیواؤں کے ساتھ ہی نئے نرماڑ کاریہ کیے گئے اور بنیادی ڈھانچے کا وستار کیا گیا۔ سکشم شرم بلوں کا پرشکشن کیا گیا، बांधों का निर्माण किया गया, कनेक्टिविटी और राजमार्गों का विस्तार किया गया। ये सभी चीजें आर्थिक विकास के स्पष्ट उदाहरण हैं, जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद को मजबूत बनाया गया और हर स्तर पर शैक्षिक केंद्रों का विस्तार किया गया, ताकि आर्थिक आत्मनिर्भरता के मार्ग में कदम आगे बढ़ाया जा सके।
स्वतंत्र राष्ट्रों का इतिहास इस तथ्य को दर्शाता है कि स्वतंत्रता और स्वाधीनता के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। एक ऐसा राष्ट्र जिसने अपने अधिकारों और स्वतंत्रता को प्राप्त कर लिया है, निस्संदेह वो देश आर्थिक स्वतंत्रता सहित व्यापक स्वाधीनता को भी हासिल कर सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय उपलब्धियों की रक्षा करने से अहंकारी दुश्मन में मुकाबला करने का साहस नहीं हो पाता है। इसीलिए इमाम खुमैनी ने स्वाधीनता को जीवनवर्धक करार दिया है। उन्होंने कहा था कि हम दूसरे के वर्चस्व में जीने के कायल नहीं हैं। हमारा मानना है कि जीवन का मूल्य आज़ादी और स्वाधीनता में है। हमारा धार्मिक आदेशों ने कि जो सबसे आधुनिक दिशा निर्देश है हमारे लिए मार्ग निर्धारित कर दिया है। हम उन आदेशों के मुताबिक और दुनिया की सबसे महान हस्ती हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेतृत्व में उन सभी शक्तियों से मुकाबला करेंगे जो हमारे देश पर हमला करना चाहती है।
आर्थिक स्वाधीनता और विकास का एक मापदंड देशों की वैश्विक रैंकिंग है। आंकड़ों से पता चलता है कि विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति से पहले ईरान का विश्व में कोई स्थान नहीं था। क्रांति से पहले ईरान में औद्योगिक उत्पादन के नाम पर सीमित पैमाने पर सिर्फ असेंबलिंग होती थी। इस संदर्भ में आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई का कहना है कि कुख्यात, अपमानित और भ्रष्टाचारी तानाशाही शासन के दौरान ईरानी सरकार पैदा ही निर्भर हुई थी। मोहम्मद रजा शाह के पिता क्योंकि दूसरों पर आश्रित थे, इसलिए उसने जन्म से ही ऐसे माहौल में आंखें खोली थी और सांस लिया था। वो इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने इस राष्ट्र को पूरी तरह से निर्भर कर दिया था।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के आंकड़ों के मुताबिक ईरान के सभी विकास संकेतकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हालांकि विकास और प्रगति के कुछ पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के संकेतों द्वारा पेश नहीं किया जा सकता है जो इसका गुणात्मक पहलू है। गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे से लाभान्वित होना और गाँवों और छोटे शहरों का शिक्षा की गुणवत्ता का आनंद लेना उन मुद्दों में से है जिन्हें आर्थिक संस्थानों की कई रिपोर्टों में नज़रअंदाज कर दिया गया है। इस्लामी गणतंत्र की नीतियों में से एक गरीबी उन्मूलन है, इसलिए सिद्धांत और व्यवहार के आधार पर समाज में गरीबी उन्मूलन को व्यवहारिक बनाया गया है।
इस्लामी गणतंत्र ईरान के संविधान के 29वें अनुच्छेद के अनुसार सेवानिवृत्ति, रोजगार, वृद्धावस्था, विकलांगता सहायता, आवास, दुर्घटना और स्वास्थ्य सेवाएं बीमे के रूप में सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करना सभी का अधिकार है। कानून के अनुसार सरकार देश के सभी नागरिकों के लिए उपरोक्त सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य है। इमाम खुमैनी की एक मुख्य चिंता गरीबों की सहायता करना थी। इस संदर्भ में उनका कहना था, खुदा हमारी और हमारे देश के अधिकारियों की राजनीति में कोई ऐसा दिन न दिखाए कि जब हम गरीबों से मुंह मोड़ लें और पूंजीपतियों और अमीरों का अधिक समर्थन करें और उन पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि ये ईश्वरीय दूतों हजरत अली अलैहिस्सलाम और इमामों का आचरण और शैली नहीं रही है। हमारी क्रांति को ये गौरव प्राप्त है कि उसने गरीबों और निर्धनों का समर्थन किया है और कमजोरों के अधिकारों की रक्षा का नारा बुलंद किया है।
ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक इमाम खोमेनी के निधन के बाद समाज के गरीब तबके की सहायता का सिलसिला जारी है। इमाम खोमेनी के उत्तराधिकारी आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई भी गरीबी के उन्मूलन के बारे में कहते हैं, इस्लामी व्यवस्था की स्थापना के बाद गांवों, गांव के निवासियों और पिछड़े हुए शहरों और वंचित वर्गों को कि जिनके लिए इस देश में किसी तरह का कोई अधिकार मद्देनजर नहीं रखा गया था, उसने उस नीति को बदल दिया। आज हमारी सरकार सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों की सेवा पर ध्यान देती है। क्रांति के बाद से सभी सरकारों ने ये प्रयास किया है। इस दौरान बहुत महत्वपूर्ण कार्य अंजाम दिए गए हैं। ये सब इमाम खुमैनी की सामाजिक न्याय की नीति की बरकत से हुआ है। समाज में शांति और न्याय स्थापित करने के लिए कल्याणकारी सुविधाएं और गरीबी उन्मूलन इस्लामिक क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कार्यों में से एक है।
गरीबी उन्मूलन का एक उदाहरण इस्लामी क्रांति की सफलता के 22 दिन बाद 5 मार्च 1979 को इमाम खुमैनी सहायता समिति का गठन है। इस समिति का मूल उद्देश्य गरीबों के लिए रोजगार पैदा करना और उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान करना है। इसी प्रकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, लोगों में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करना और पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाने के लिए विवाह का समर्थन करना है। इमाम खुमैनी सहायता समिति के अधिकारियों ने गांवों और जनजातियों के समर्थन पर अधिक बल दिया है।
ये समिति गरीबों और बेरोजगारों को वित्तीय समर्थन के रूप में लोन प्रदान करती है ताकि उनके लिए रोजगार पैदा किए जा सकें और हैंडीक्राफ्ट, पशुपालन, कृषि और कारखानों में उनकी ऊर्जा का सही प्रयोग किया जा सके। इस्लामी क्रांति की सफलता के शुरुआती महीनों में एक दूसरी संस्था जिहादे साजंदगी या रचनात्मक निर्माण की स्थापना भी की गई, जिसने गांवों और पिछड़े हुए इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए काफी प्रयास किए हैं। इस संस्था की जिम्मेदारी वंचित इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाना और इस तरह के इलाकों में रहने वालों को मूल सुविधाएं प्रदान करना है। तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहाँ पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताज़ा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम। ईरान भ्रमण।
दोस्तों, कार्यक्रम ईरान भ्रमण की अगली कड़ी के साथ उपस्थित हैं, जिसमें पाकिस्तान के बारे में चर्चा करेंगे। मरियम मेहरदादी और गायम रिजवी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, पिछले कार्यक्रम में हमने आपको कज़वीन प्रांत और वहाँ के कुछ नगरों के बारे में बताया था। आज हम आपसे उस नगर के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको ईरान के अंगूरों की राजधानी के नाम से जाना जाता है। इस नगर का नाम है ताकिस्तान। हालांकि इस नगर में केवल अंगूर के बाग ही नहीं हैं, बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी ताकिस्तान विशेष महत्व का स्वामी है।
ताकिस्तान नगर कज़विन प्रांत के पश्चिम में स्थित है। कज़विन नगर से इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। इस नगर में जो ऐतिहासिक धरोहरें पाई जाती हैं, उनमें इस नगर के अति प्राचीन होने का पता चलता है। इस नगर का प्राचीन केंद्रीय भाग खोले को नामक प्राचीन टीले पर स्थित है। इतिहासकारों का कहना है कि एक मौसमी नदी के कारण ताकिस्तान नगर को अस्तित्व मिला, जो नगर के दक्षिणी भाग से गुजरती थी। इस नदी के पानी से नगर के अधिकांश कृषि की जमीनों की सिंचाई होती थी।
खोले कू नामक प्राचीन टीले के बारे में किए जाने वाले शोध ये बताते हैं कि इसका अस्तित्व लगभग 7000 साल पहले था। यही कारण है कि ईरान के ताकिस्तान नगर को न केवल इस क्षेत्र का बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन नगर समझा जाता है। अति प्राचीन नगर होने के कारण ताकिस्तान में बहुत से प्राचीन अवशेष भी मौजूद हैं। एक अन्य विशेष बात यह भी है कि प्राचीन वैश्विक राजमार्ग सिल्क रोड यहाँ से होकर गुजरता है। कज़विन नगर की प्राचीन धरोहरों में सबसे पुरानी धरोहर यही खुले कू टीला है, जो 5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
दोस्तों, ये क्षेत्र ईसा पूर्व 5 से 6 शताब्दियों से संबंधित वस्तुओं से भरा है। सन 1377 हिजरी शमसी में खुले कूह टीले को ईरान की राष्ट्रीय धरोहर की सूची में पंजीकृत कर लिया गया था। ताकिस्तान के आर्थिक विकास के कई कारक हैं, जैसी अच्छी जलवायु, उपजाऊ भूमि, कृषि के लिए पानी तक बहुत ही सरलता से पहुंच और इसी प्रकार के कुछ अन्य कारक। क्षेत्र की उपजाऊ भूमि पर विशेष आकर्षण के अतिरिक्त अंगूर के बड़े बड़े बाग, आड़ू, नाशपाती और सेब आदि की पैदावार होती है।
हालांकि ताकिस्तान को अंगूरों के बाग से अधिक ख्याति प्राप्त है, इसीलिए इस नगर को ईरान के अंगूरों की राजधानी कहा जाता है। प्राचीन काल से ताकिस्तान के अंगूर के बाग लोगों की आय का प्रमुख स्रोत रहे हैं। आज भी अंगूर की पैदावार के कारण ताकिस्तान के बहुत से लोगों की आय का मुख्य स्रोत अंगूर ही हैं। ताकिस्तान के अंगूर की पैदावार इतनी अधिक होती है कि प्रतिवर्ष अंगूर के मौसम में बहुत बड़ी संख्या में मजदूर यहाँ पर पलायन करके अंगूर के खेतों में काम करने के लिए आते हैं।
वैसे तो ताकिस्तान में कृषि का चलन शताब्दियों से है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों का मुख्य काम खेती ही है, किंतु औद्योगिक विकास के कारण यहाँ के बहुत से लोग अब कारखानों में भी काम करते हैं। ईरान के अन्य नगरों की ही भांति ताकिस्तान के लोग भी हस्तकला उद्योग में रुचि रखते हैं। यहाँ पर कालीन की बुनाई, चटाइयों की बुनाई, कपड़ों की कढ़ाई और हस्तकला से संबंधित इसी प्रकार के बहुत से काम करते हुए लोग आपको मिल जाएंगे।
ताकिस्तान के स्थानीय लोग जिस भाषा में बात करते हैं उसको ताती भाषा कहा जाता है। यहाँ के लोग स्वयं को ताकिस्तानी कहते हैं। ताती भाषा ताकिस्तान के अतिरिक्त वहाँ के 10 नगरों और निकटवर्ती देहातों में आज भी बोली जाती है। कहते हैं कि ताती भाषा ईरान की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। एक समय में ये भाषा खुरासान से लेकर आजरबाईजान तक के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थी, जो आज ईरान के एक सीमित क्षेत्र में बोली और समझी जा रही है।
कज़विन के मरुस्थलीय क्षेत्र में बहुत से ऐतिहासिक एवं मूल्यवान धरोहरें पाई जाती हैं। यहाँ की मूल्यवान ऐतिहासिक धरोहरों में से एक बुकहे पीर है। ये सलजुकियों के काल की ईंटों से बनी हुई एक इमारत है जिसके आज खंडर ही बाकी बचे हुए हैं। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो हमें पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में जाना पड़ेगा। ये एक आयताकार इमारत है जिसके चारों ओर गुंबद बने हुए हैं। इसकी एक विशेषता यह है कि इस इमारत के निचले तथा अंदरूनी भाग को अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है जो वास्तुकला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है।
इस इमारत की साधारण सी निर्माण शैली सलजुकी काल की है। इस इमारत का अवशेष देखने से ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें उसमें आज भी ऐसी ही हैं जो इसके निर्माण काल से अब तक बाकी हैं। इसका गुंबद दो लेयर वाला है। मरम्मत के कारण उसका असल स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। सन 1330 हिजरी कमरी में बुकाए पीर को ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूचित में पंजीकृत किया जा चुका है। पाकिस्तान के लोगों को उचित ढंग से पहचानने के लिए बेहतर ये होगा कि हम वहाँ के संग्रहालयों को देखें।
पाकिस्तान नगर का प्राचीन संग्रहालय इस नगर के इमाम नामक मार्ग पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। इस संग्रहालय में 60 से अधिक प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं, जिनमें हस्तशिल्प से संबंधित वस्तुएं और कृषि से संबंधित कई प्रकार के उपकरण मौजूद हैं। तात जाति के लोगों के इतिहास से संबंधित पुस्तकों को भी इस संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में जो वस्तुएं रखी हुई हैं उनमें से कुछ को वहां के स्थानीय लोगों ने संग्रहालय को उपहार स्वरूप दिया है।
इसी संग्रहालय से मिली हुई पाकिस्तान हस्तशिल्प की एक प्रदर्शनी भी है जो वहां की प्राचीन हस्तकला और हस्तशिल्प की गाथा सुनाती है। पाकिस्तान के इस संग्रहालय को देखने के बाद वहाँ के बाजार को अनदेखा करना कोई अच्छी बात नहीं है। इस बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को निकट से देखा जा सकता है। क्योंकि पाकिस्तान में प्रचुर मात्रा में अंगूर पैदा होता है, इसलिए यहाँ के बाजार में आपको पूरे साल कई प्रकार की किशमिशें देखने को मिलेंगी।
दोस्तों, पाकिस्तान के निकटवर्ती गांव में भी कई ऐतिहासिक धरोहरें देखने को मिल जाएंगी। इन्हीं धरोहरों में से एक पाकिस्तान का किले दुख्तर है। ये सुंदर प्राचीन किला पाकिस्तान नगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर जियाबाद नामक क्षेत्र में आप कोलू गांव में स्थित है। यह किला वास्तव में पत्थर के टीले पर बना हुआ है। सासानी काल से संबंधित इस वैभवशाली दुर्ग की एक विशेषता यह है कि ये बहुत दूर से दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए इस किले को मीलों दूर से देखा जा सकता है।
किला दुख्तर की एक विशेषता ये भी है कि इसके तीनों तरफ का हिस्सा ऐसा है जिसके कारण उस तक पहुंचा नहीं जा सकता। केवल इस किले के दक्षिणी भाग से ही उसमें जाया जा सकता है। जब हम इस किले की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में कई जगहों पर छोटे छोटे चबूतरे दिखाई देते हैं। इनको देखकर ऐसा लगता है कि उस काल में किले तक पहुंचने के लिए इनको शायद सीढ़ियों के रूप में प्रयोग किया जाता रहा होगा। इस किले की दीवारें लगभग 3.5 मीटर तक मोटी हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इनको बहुत ही मजबूती के साथ बनवाया गया था।
इस किले की एक विशेषता यह है कि यहाँ से खड़े होकर बहुत दूर तक के दृश्यों को देखा जा सकता है। विगत में इसको संभवतः क्षेत्र की सुरक्षा के लिए पहरेदारी के लिए प्रयोग किया जाता था। किले दुख्तर को स्थानीय भाषा में खिज किले के नाम से पुकारते हैं, जिसका अर्थ होता है लड़की वाला किला।
आपके लिए ये जानना उचित होगा कि पाकिस्तान नगर के उत्तर में 20 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव स्थित है जिसका नाम है ताकंद। पर्यटन की दृष्टि से इस गांव को विशेष महत्व हासिल है। यहां पर बहुत से प्राकृतिक आकर्षण, भूमिगत जल स्रोत, खूबसूरत झरने और कई छोटी पहाड़ी नदियां पाई जाती हैं। वसंत के मौसम में यहाँ पर चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। उस समय यहाँ के प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनमोहक हो जाते हैं।
ताकिस्तान नगर से 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में खुर्रमाबाद नामक गांव के केंद्र में ईंटों से बनी हुई एक मीनार है। ये 12 मीटर ऊंची है। ये 6 मीटर के क्षेत्रफल में बनी हुई है, जिसकी चौड़ाई 35 सेंटीमीटर तक है। इसमें ऊपर जाने के लिए घुमावदार 17 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इस मीनार को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि उसके भीतर रोशनी आती रहे। यही कारण है कि इसमें कुछ स्थानों पर ईंटों के बीच में थोड़ा सा फासला दिया गया है, ताकि रोशनी अंदर आ सके। इस इमारत को भी ईरान की राष्ट्रीय धरोहरों की सूची में पंजीकृत किया जा चुका है।
दोस्तों, ताकिस्तान नगर से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर बाशगल नामक संरक्षित क्षेत्र है, जो लगभग 26,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के कारण ये बहुत से जानवरों की स्थली बना हुआ है। इसके दक्षिणी क्षेत्र में आपको बहुत बड़ी संख्या में हिरण देखने को मिल जाएंगे। इसके अतिरिक्त कई अन्य प्रकार के जानवर भी वहाँ पर वास करते हैं। दूर दूर तक आबादी न होने के कारण यहाँ पर पशुओं की संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। यहाँ की एक विशेषता ये है कि यहाँ इमामजादे, हफ्त संदूक और किस किले की इमारतें भी पाई जाती हैं।
तो दोस्तों, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दीजिए।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। श्रोताओ, हमारा प्रसारण आप शॉर्टवेव में 31 मीटर बैंड बराबर 9390 किलोहर्ट्ज़ पर सुन रहे थे। हमारा ईमेल एड्रेस है hindi@dwsir.ib.ir। हमारी वेबसाइट है parstoday.com/hi और व्हाट्सएप नंबर है 0098-9035065492। इसी के साथ अनुमति दीजिए। खुदा हाफिज़।